आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःख योनयः एव ते आदि अन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेया न तेषु रमते बुधः। ये जो हि निश्चय ही संस्पर्शजा भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोगाः भोग दुखः दुख योनयः स्रोत कारण एव निश्चयः ते वे आदि प्रारंभ अन्तवन्तः अंत वाले कौन्तेय हे कुंती पुत्र न कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है बुधः बुद्धिमान मनुष्य। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तात्पर्य, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्यानंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हैं, अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को राम भी कहा जाता है। भागवतम में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भी कहा गया है, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्तम शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौक्षम त्वनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी हैं, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान इस अध्याय में, इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके लक्षण क्या है। बुधः मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इंटेलिजेंट, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसी चीजों में रुचि नहीं लेता जिसका कोई ना कोई आदि होता है और कोई ना कोई अंत होता है। ऐसे सुखों में वो रुचि नहीं लेता। तो हर व्यक्ति सुख की तलाश में तो है, इसमें तो कोई दो शक नहीं है। हर कार्य के पीछे हमारा जो मूल हेतु है वो यही रहता है कि हम सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन अपनी अपनी चेतना के विकास के अनुसार हर व्यक्ति अपने अलग तरीके से उस सुख को पाने का प्रयास कर रहा है, अनंत सुख को पाने का प्रयास कर रहा है। कोई व्यक्ति सोचता है स्थूल शरीर से मिलने वाले सुखों से वो सुखी हो जाएगा। तो स्थूल शरीर यानी कि ये जो पांच भूतों का बना हुआ शरीर है जिसमें पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, तो इस स्तर से वो सुख लेने का प्रयास कर रहा है। सोच रहा है कि यही सुख उसको वास्तव में सुखी कर सकेगा। तो अच्छा खाना, अच्छा रहना, आरामदायक जीवन, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाएं तो ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि ये तो बहुत टेम्प्ररी होते हैं। जैसे खाने का है, तो आप दावत में गए, आपने सोचा आज तो बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया दावत है, पर खाया कुछ समय के लिए अच्छा रहा, पर ज़्यादा खा लिया और फिर कितना समय तक के लिए तकलीफ हुआ। सबका अनुभव है ये साधारण। खूब रसगुल्ला खाए और फिर बाद में उल्टियाँ और इतना तबीयत खराब हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। फिर हम लोग कान पकड़ते हैं, अभी दोबारा ऐसे कभी ऐसे नहीं करेंगे। तो फिर दोबारा जब दावत आती है तो फिर दोबारा से वही गलती करते हैं। तो थोड़ा बुद्धिमान हो जाता है, सोचता है कि ये तो बहुत ही क्षणिक होते हैं, ये जो स्थूल स्तर पे जो सुख होते हैं बहुत क्षणिक होते हैं। फिर वो थोड़ा मन के स्तर पे जाता है, मन के स्तर के सुख भोगना चाहता है, जैसे कला, म्यूजिक, तो इसमें उनको बहुत आनंद आता है। खाने, सोने इत्यादि में समझ जाते हैं कि तो बहुत ही क्षणिक है, लेकिन जो ये मन के स्तर के आनंद है, कोई आर्टिस्ट होते हैं, उनको अलग अलग आकृतियां बनाने में, पोएम लिखने में, संगीत, इन सब में उनकी रुचि होती है और थोड़ा लंबे समय तक के रहती है वो आनंद उससे मिलने वाला। लेकिन अंततः वो भी हम देखते हैं कि टॉप टेन में अभी पता नहीं आते होंगे टीवी में, तो टॉप टेन गाने अभी भी आते हैं टॉप टेन बंद हो। पहले जब हम थे तब आते थे टॉप टेन गाने, आज के तो बदलते रहते थे वो टॉप टेन, क्योंकि स्वभाव है भौतिक जगत में, कोई भी चीज़ टिकती नहीं है। आज लोगों की पसंद है, कल को दूसरा नया गाना आएगा, नया चीज़ पसंद करेंगे, एक ही चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है भौतिक जगत में, सब बदलती रहती हैं। तो वो भी कुछ समय के लिए रहते हैं, संगीत और का आनंद या कला का आनंद, तो वो एक है। फिर अहंकार वश आनंद, बड़ी पोजीशन, सब लोग हमारा सम्मान करें, इसमें जो आनंद मिलता है, जिसके पीछे बहुत लोग भाग रहे हैं। समाज में हमारी स्थिति क्या है, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, लोग कैसा हमारे को सोचेंगे, इसको लेकर के बहुत लोग जीवन की अधिकतर चीज़ें ये देख कर करते हैं कि लोग इस बारे में मेरे बारे में क्या कहेंगे, यदि मैं ऐसा करूँगा, यदि मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लोगों के सामने अपनी एक अच्छी छवि रहे, इसके लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं सोच कर कि लोग क्या कहेंगे। प्रेस्टीज एक हमारी आवश्यकता थोड़ी होती है, पर समाज के अंदर लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। तो ये सामान्य अनुभव है। तो ये प्रेस्टीज जो है, हमारी समाज में स्थिति, इससे एक आनंद मिलता है जो बहुत लंबे समय तक रहता है। बाकी जो हमने आनंद अनुभव डिस्कस किए, स्थूल इंद्रियों से मिलने वाले आनंद से अधिक लंबे समय तक वो रहता है। कोई व्यक्ति किसी कंपनी में मालिक है, तो जब तक वो कंपनी का मालिक रहेगा तब तक उसको वो आनंद मिलेगा। हो सकता है मरते दम तक वो रहे, तो मरते दम तक उसका वो आनंद रह सकता है, पर मरना पड़ेगा और मरने के समय फिर समाप्त हो जाएगा वो आनंद। फिर अगले जीवन में जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही किसी बड़ी कंपनी का मालिक बने, यदि उसके कर्म जानवर जैसे बनने के हैं तो वो जानवर ही बन सकता है, तो वो भी स्थायी नहीं है, बहुत से बहुत इस जन्म, इस जीवन पर्यंत तक रह सकता है। तो यहां बताया गया कि वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो न केवल स्थूल शरीर के स्तर पर आनंद लेने का प्रयास कर रहा है, न केवल सूक्ष्म मन बुद्धि और इंद्रिय, मन बुद्धि और अहंकार के स्तर पर आनंद लेने का प्रयास कर रहा है, वो दोनों ही मूर्ख हैं। क्योंकि वो दोनों का गुण कैसा बताया गया, आद्यंतवंत, उनका एक आदि होता है, उनका एक अंत होता है, निश्चित। कोई भी ऐसा सुख हम सोच ही नहीं सकते जो शारीरिक या मानसिक स्तर पे हो, जिसका आदि और अंत ना हो, क्योंकि जो उन सुखों को प्राप्त करने का जो आधार है ये शरीर या जो मन, यही नश्वर है। तो स्वाभाविक है कि इनसे मिलने वाले जितने भी आनंद होंगे वो सब नश्वर होंगे। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि ना तेषु रमते बुद्धा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसे टेम्परेरी क्षणिक सुखों में वो रुचि नहीं लेता है। और बताया है कि ऐसे सुखों का क्या लक्षण है और दूसरा गुण क्या क्या है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। ये उत्पन्न कहां से होते हैं, संस्पर्शजा, इंद्रिय जब अपने इंद्रिय के विषय के संपर्क में आती है तो उससे ये आनंद तथा कथित अनुभव हमें होता है, जो कि पूरी तरह से भ्रम है, केवल वास्तव में उसमें अपने आप में चीज में कोई आनंददायक चीज नहीं होती है, ये केवल माया, ये प्रकृति के प्रभाव की वजह से हमें लगता है कि वो चीज आनंददायक है। जैसे मनुष्य के लिए सूजी का हलवा या गाजर का हलवा बहुत टेस्टी हो सकता है, पर एक सुअर के लिए उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, गाजर के हलवे का। एक सुअर के लिए वो मल जो है वो अधिक टेस्टी है। तो अपने आप में हलवे में कुछ नहीं है वो केवल हमें जिस प्रकार का शरीर मिला है, उस शरीर का संपर्क जब उसके विषय से होता है तब उसे एक आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा को जो उसके अंदर बैठी है, गुणों के प्रभाव से ऐसा होता है। वास्तव में वो अपने आप में उस चीज में कुछ नहीं है। जैसे हमें कार चलाने में आनंद होता है, कार रखने में आनंद होता है, तो वास्तव में देखें तो कार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आनंद देने लायक हो। क्या है कार? एक टिन है, एक टिन है, और क्या है? प्लास्टिक है, कुछ लोहा है, कुछ रबड़ है, तो इसमें क्या आनंद है? कोई इसमें आनंद देने वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन उसको इस प्रकार से आकृति दी जाती है और कि वो जब इन आंखों को जब ये आंख देखती हैं उसको तो बहुत आनंद आता है। मर्सिडीज कार हो, कितनी सुंदर कार है, पर एक मच्छर के लिए या एक पक्षी के लिए जो मर्सिडीज में बैठा है तो उसका ऐसा नहीं कि मर्सिडीज बैठने ज्यादा आनंद आएगा, एक मारुति बैठने में कम आनंद आएगा। पक्षी के लिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसके जो शरीर बना है उसका उससे कोई संबंध नहीं है। वो पक्षी के लिए यहां उसे जहां वो कीड़ा दिखेगा उसे हाँ ये यहां बहुत आनंद आएगा, वो वहां जाएगा, चाहे वो कितनी गंदगी में क्यों ना हो। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, भगवत गीता बताते हैं कि ये हर एक योनि में अलग अलग जो सुख की परिभाषा सबकी रहती है, इंद्रिय सुख की, वो केवल उस प्रकृति गुणों के अनुसार जो जीव को जिस प्रकार की इंद्रिय मिली है उसके अनुरूप उसको सुख मिलता है। जो कोई एक मिस यूनिवर्स है तो जानवरों के लिए मिस यूनिवर्स क्या है? कुछ भी नहीं है उनके लिए, यूजलेस है। कोई जानवरों को हम देखते हैं, जब टीवी पे मिस यूनिवर्स आ रहा है तो सब जानवर इकट्ठा हो गए देखने के लिए, मिस यूनिवर्स कंटेस्ट है उनके लिए वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई मिस यूनिवर्स नहीं। हाँ, उनके लिए वो उनकी जाति का कोई होगा तो वो मिस यूनिवर्स उनके लिए है, पर मनुष्य का जो मिस यूनिवर्स है वो उनके लिए कुछ नहीं। तो यानी कि ये सब केवल एक भ्रम है जो माया के द्वारा क्रिएट किया था, वास्तव में कुछ नहीं। इसलिए जैसे अंग्रेजी में कहा था, ब्यूटी इज स्किन थिक, जो सौंदर्य है वो केवल जितनी मोटी चमड़ी है उतना ही सौंदर्य होता है और इससे अधिक कुछ नहीं है। हम किसी का फोटो लेते हैं और अप्रिशिएट करते हैं वो कितना सुंदर है, मान लीजिए उसी व्यक्ति का ये सब चमड़ी निकाल दी जाए, खाल, और उसका उसका फोटो लिया जाए तो कितने हम में से लोग उसको सराहेंगे, बहुत सुंदर फोटो है, खून खून और मांस, क्या उसमें अच्छा है, क्या उसमें सुंदरता है? यहाँ सुंदरता क्या हुई, वो जो खाल थी वो सुंदर लग रही थी, खाल जब चढ़ी हुई थी तो खाल जब अलग कर दिया तो खाल भी सुंदर नहीं है और शरीर भी सुंदर नहीं है। शंकराचार्य बताए हैं कि ये जो भौतिक शरीर है क्या है, एक खाल का थैला है जिसके अंदर मल मूत्र कफ हड्डियां फैट ये सब भर दिया गया है और ये हमको माया के प्रभाव से लगता है हाँ ये बहुत सुंदर है। तो ये हर चीज ऐसी है इस भौतिक जगत में, वास्तव में अपने आप में, क्योंकि हम आत्मा हैं और ये जड़ चीजें हैं सब, टिन है, लोहा है, खाल है, मांस है, हड्डियां हैं, ये सब जड़ चीजें हैं और हम आत्मा हैं, तो इसलिए आत्मा का वास्तव में इनसे कोई संबंध नहीं है। ये आत्मा को सुखी कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस समय जो हम आत्माएं हैं भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है तो ये भ्रमवश हमको ये जड़ चीजें प्रिय लगती हैं, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं कर सकती आत्मा को, क्योंकि आत्मा के इस गुण से बिल्कुल विपरीत उनके गुण हैं। आत्मा को चाहिए ऐसी चीजें जो उनको नित्य आनंद प्रदान कर सके। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि हम मार्केट में आते हैं, हम पूछते हैं ये चलेगी ना, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी, कब तक चलेगी? वो बोलेगा अरे ये खत्म ही नहीं होगी, आपके पूरे जीवन तक चलेगी। हाँ फिर ठीक है, तो हम हर चीज चाहते हैं जो हमेशा रहे। तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम आत्मा हैं। लेकिन भौतिक जगत में भौतिक कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो हमेशा हमारे साथ रहे। इसलिए कहा गया है यहां जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि ये हर चीज, क्योंकि इंद्रिय विषय के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है ये भौतिक सुख। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि ये सुख नहीं है, ये दुख है। दुख यो न यह, ये दुख का स्रोत है। जो इंद्रिय सुख है वो दुख का स्रोत है, तो ये विचित्र बात है, क्रांतिकारी विचार है। यदि हम इसे समझें ढंग से तो हमारा जीवन के प्रति पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा कि जिसे हम सुख समझ रहे हैं इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति, वो सुख नहीं है, वो दुख का कारण है। दुख यो न यह, वो दुख का स्रोत है। इस भौतिक जगत में जिस भौतिक वस्तु से हमारा प्रेम है, जिस किसी भौतिक शरीर से हमारा प्रेम है, वो लगता सुख है पर कारण बनता है दुख का। इसलिए जानते हुए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे दुख के कारणों के पीछे नहीं भागता है, वो जानता है तो दुख है। जैसे बताया गया है हर एक इंद्रिय का, ऐसे बताया गया है कैसे एक एक इंद्रिय जो है हमको भ्रमित करती है और हमारे लिए दुख का कारण बनती है। जैसे मछली है, तो मछली को पकड़ने का तरीका क्या है? जो मछुआरा है वो उसकी जीभ से उसको पकड़ता है, कांटे में खाने को डालता है और मछली अपनी जिह्वा के वेग में आकर के सोचती है कि हाँ आनंद की वस्तु है, और उसको जाती है और वहां कांटा होता है, पीछे मारी जाती है। तो लगा उसको सुख पर था उसका मृत्यु उसमें। तो ये चाल थी मछुआरे की, फंस गई। उसी प्रकार से हिरण को कैसे पकड़ा जाता है? बांसुरी बजाता है तो शिकारी है, क्योंकि हिरण को सुंदर म्यूजिक, कान में उसकी बहुत आसक्ति होती है, तो सुंदर बांसुरी की आवाज सुनकर के सब हिरण इकट्ठा हो जाते हैं, आगे मग्न हो जाते हैं, और फिर आराम से शिकारी उनको पकड़ लेता है। तो उसका जो ये सुनने की इंद्रिय है ये कारण बना उसकी मृत्यु का। उसी प्रकार जो चिंगारे, जो पतंगे होते हैं जो बारिश के सीजन में आते हैं, तो देखते हैं हम लो अग्नि से आकर्षित होते हैं, देख करके उसके रूप को देख करके आकर्षित होते हैं और उसमें जाके भस्म हो जाते हैं। तो उनकी जो आंख की शक्ति है, आंख है जो, वो उनकी मृत्यु का कारण बनती है। उसी प्रकार जो हाथी जो पकड़ा जाता है, वो उसी प्रकार एक हथनी के द्वारा पकड़ा जाता है। एक ट्रेन हथनी होती है और गड्ढा करते हैं तो हथनी भागती है और उसके ऊपर घास लगाई होती है, उसके अंदर गिर जाता है। ऐसे हाथी को स्पर्श के इंद्रिय से पकड़ा जाता है। जो भंवरा होता है वो फूल, जो गुलाब का फूल होता है, कमल का फूल होता है, तो उसकी जो सुगंध होती है उसके लिए बैठ जाता है और फिर शाम होने पर वो बंद हो जाता है और बंद होने से उसी के अंदर मर जाता है। तो उसकी सुगंध की शक्ति उसका कारण बनती है मृत्यु का। तो ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जानता है कि ये भौतिक जगत के जितने भी ये इंद्रिय सुख हैं, ये सुख नहीं है, ये दुख के कारण है। जिस व्यक्ति को ये विश्वास हो गया है, पूरी तरह से कन्विंस्ड हो गया है कि भौतिक जगत में जितने भी ये इंद्रिय सुख कारण, लगने को इंद्रिय सुख है, तथा कथित इंद्रिय सुख है, बाह्य रूप से जो प्रतीत हो रहा है इंद्रिय सुख, वो जाल है, जाल है, माया के द्वारा बिछाया हुआ जाल है हमको दुख देने का। इसलिए दुर्गा जी जो माया को प्रतिनिधित्व, माया को शक्ति को प्रदर्शित करती हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, जो उनके वश में रहने वाले सब लोगों को त्रिशूल से वो लगातार मारती रहती हैं, भोंकती रहती हैं। आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश, शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट, अन्य जीवों से उत्पन्न होने वाले कष्ट और देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट जो हर व्यक्ति को सताते रहते हैं, तो ये दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल रहता है। तो जब तक हम दुर्गा जी की सेवा में रहेंगे, यानी इस भौतिक जगत में रहेंगे, जब तक इंद्रियों के सेवक रहेंगे, तब तक त्रिशूल रहेगा, दुख ही होने हैं, दुख का कारण होता ही रहेगा। इसलिए वो सब जाल है केवल, और कुछ नहीं है। माया का द्वारा बिछाया गया जाल है हमको इस भौतिक जगत में पकड़े रखने के लिए और दुख देते रहने के लिए। ये जंजीरें हैं माया की। ये बुद्धिमान व्यक्ति को अपने अनुभव से स्पष्ट अपने हृदय में उतार लेना है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं भक्तों के संग में और जब फिर भौतिक जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं, ये दोनों के मिश्रण से ये अनुभूति होती है, हमको रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार होता है कि हाँ अभी जैसे हम भगवद्गीता पढ़े, अभी फिर घर में जाएंगे तो ये चीजें स्पष्ट रूप से हमारे अनुभव में आएंगी, क्योंकि ये तो हर व्यक्ति की कहानी है, हर जीव की कहानी, ये तो कोई ऐसा नहीं कि अपवादों के लिए है, सबके लिए है, सबके लिए, तो हर व्यक्ति इसको अनुभव करेगा। और जब शास्त्र पढ़ा है तो उसको तुरंत स्मरण होएगा, हाँ सही कहा था भगवद्गीता में, ये सब भौतिक सुख केवल दुख का कारण बनते हैं, इसलिए इसके पीछे भागना पागलपन है। तो ऐसे कई कई बार, एक बार आपको समय में आएगा लेकिन फिर आप गलती करेंगे, वेग, क्योंकि जो इंद्रियों का जो वेग होता है ये बहुत प्रबल होता है, इसको वश में करना बड़ा मुश्किल है, वेग है ये, जैसे वायु बहुत तेज होती है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे सब जीवाओं का वेग है। जैसे जब चाट पकौड़ी खाने का मन करता है तो आदमी यहां से जाता है, भागता है, वो वहां कहीं जीटी रोड पर यहाँ फेमस है, वहां चलो चलो जाना ही है, वेग है ऐसे, वो परेशान करता है, वेग खींच लेता है, कहाँ कहाँ कितनी दूर से लोग आते हैं वहां खाने के लिए, वहां मोदी नगर के पास मेरठ से आते हैं, वहां तो खींचता है वो, तो ये वेग बहुत जटिल होता है, बहुत स्ट्रांग होती है फोर्स, तो आसान ही होता है इनसे निकलना। इसलिए तरीका क्या है इनसे निकलने का वो बताएंगे, भगवद्गीता में बताया है भगवान श्री कृष्ण, हम तो नहीं बता सकते, कृष्ण भगवान बता दें तरीका। तो ये पहले समझना है कि ये वेग में भागना नहीं है, ये साक्षात्कार जिसको नहीं हुआ वो भक्ति के पथ पर, भगवत प्राप्ति के पथ पर एक कदम भी नहीं रख सकता। कई बार हम सोचते हैं भगवान की भक्ति मतलब क्या है, भगवान ने जो वृंदावन में लीलाएं की हैं उनका स्मरण करना, तो वो वास्तव में भक्ति का परम स्तर है, पर जब तक हमारी भौतिक आसक्तियां हैं तब तक वास्तव में हम भगवान की उन दिव्य लीलाओं को समझ भी नहीं सकते हैं, उनमें प्रवेश की बात तो बहुत दूर की है, हम उन्हें वास्तव में समझ भी नहीं सकते हैं जब तक हमें लेश मात्र भी भौतिक आसक्ति है। इसीलिए पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम दशम स्कंद में जहां ये लीलाएं आई हैं उससे पहले तो भगवत गीता पढ़ना है, और उसके बाद पूरा ये भागवतम का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षठ सप्तम अष्टम नवम स्कंद पढ़ना है, और उसके बाद कहीं जाकर के हम लायक होंगे उन लीलाओं को श्रवण करने के भी, तो इतना रास्ता पहले तय करना होगा। तो जनरली लोग यही भूल करते हैं, सीधा जंप लगाते हैं गोपी लीलाओं में, क्योंकि वो कर्ण को बड़े अच्छे लगते हैं सुनना, हाँ भगवान ऐसे नृत्य करते हैं, पर हमारी जब तक भावना भौतिक रहेगी, जब तक अपने को हम शरीर समझते रहेंगे, जब तक इन शरीर के सुखों को अपना सुख समझते रहेंगे, तब तक हम भगवान की उन दिव्य लीलाओं को भी भौतिक स्तर पर समझेंगे, यही समझेंगे कि भगवान कृष्ण जो कर रहे हैं वो भी भौतिक स्तर पर कर रहे हैं, इसलिए कभी वास्तव में क्या है वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये वार्निंग है कि जंप नहीं लगाना चाहिए, धीरे धीरे क्रमिक रूप से जाना पड़ेगा। इसलिए भगवत गीता में सबसे पहले भगवान समझाए हम सही नहीं है, हम आत्मा है। अभी कई बार भक्तों को सकता है जब भी आते हैं हर बार यही बोलते हैं हम सही नहीं है, हम आत्मा है, तो हम जान चुके हैं हम सही नहीं है, हम आत्मा है, आगे बढ़ो अभी कुछ डिस्कस करो, कुछ गुहे भगवान की लीलाएं, भगवान मक्खन चुरा रहे हैं, वो मटकी फोड़ रहे हैं, वाह कितना आनंद है, और बहुत सारे कथाकार हैं जो सब यही लीलाएं सुना करके सबको आकर्षित करते हैं, सब लोग हाँ मजा आ गया, वही अपने मजे के लिए सब सुनते हैं, और इसीलिए अपने मजे के लिए फिर वो लीला सुनने के बाद टीवी में आकर के एक फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस की लीला देखते हैं, कोई उनके जीवन में अंतर नहीं आता है, क्योंकि भगवान की लीलाओं को सुनने का मतलब है कि भौतिक सभी लीलाओं, जो लीला नहीं है, जो माया का फंदा है, उससे अनासक्ति होनी चाहिए, पर हम देखते हैं कि ऐसी कथाएं सुनने पर भी लोग वही चाय कॉफी में आ सकती, घर में आ सकती, पैसे में आ सकती, इंद्रिय भोग में आ सकती, वैसी की वैसी बनी रहती है उनके अंदर, क्यों, क्योंकि वो सही प्रकार से वो श्रवण किए ही नहीं, और ना जो श्रवण करवाने वाले हैं, जो सुनाने वाले हैं प्रवक्ता, ना उनको ने ढंग से श्रवण प्रवक्ता प्रवचन दिया है, क्योंकि वो भी उसी भावना में दे रहे हैं। तो इसलिए ये पहले जरूरी है कि हम ये श्लोकों को पहले केवल सुने नहीं, बल्कि सुन करके उसे आत्मसाद करें, अपने जीवन में उसको अपनाएं, धीरे धीरे उसका अनुभव करें, तब फिर हम वास्तव में भगवान की दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर पाएंगे। तो ये बहुत जटिल, जटिल क्या मतलब, सरल है वैसे तो, लेकिन हम बहुत जटिल बुद्धि के हैं इसलिए हमको जटिल लगता है कि भक्ति और भुक्ति में अंतर जानना बहुत जरूरी है। बहुत साधारण आसान है इसमें गलती कर जाना, एक सी लगती है भगवान की लीलाएं वो जो वृंदावन में, और एक साधारण एक व्यक्ति जो काम वासना से पीड़ित रहता है, एक ही है दोनों, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। तो वो जब तक अंतर सही में नहीं आएगा तब तक हम भी उन लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए अंतर बताया गया है, क्या है, काम और प्रेम में अंतर बताया गया है। कृष्णेन्द्र प्रीति इच्छा सारे कहे प्रेम, आत्मेन्द्र प्रीति इच्छा बल कार्य काम। जो आत्म इंद्रिय की इच्छा है, अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करने की जो इच्छा है, उसका नाम प्रेम नहीं है, उसका नाम काम है। कोई भी इंद्रिय हो, स्थूल इंद्रिय हो या सूक्ष्म इंद्रिय हो, यानी मन बुद्धि अहंकार हो या तो आंख नाक कान इत्यादि, कोई भी भौतिक स्थूल इंद्रिय है या तो वो सूक्ष्म इंद्रिय है, उसको भोग करने की जितनी भी इच्छाएं हैं, यानी आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा, वो सब काम है, लस्ट, केवल काम है वो, उनका भक्ति से कोई लेन देन नहीं है। भक्ति है कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा तरे बले प्रेम, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है उसे ही प्रेम कहते हैं। तो ये हम देख सकते हैं ब्रजवासियों में ये प्रेम था, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा, अपनी और कोई इच्छा नहीं। तो उस स्तर पर पहुंचने के लिए पहले आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा से निकलना होगा, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा से निकलना होगा। तो उसके लिए ये सब अनेक अनेक श्लोक में भगवान बताए हैं कि पहले अपने कर्म के फलों से आसक्ति छोड़ो, इस भौतिक जगत में भोग करने की आसक्ति छोड़ो बार बार। और ये सुनने में अच्छा लगता है हमको, क्या बार बार मन को वश में करो, भोग मत करो, चाय मत पियो, ये मत करो वो मत करो, ये मजा नहीं आता यहां पर। इसलिए बहुत कम लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं सुनने में ये सब चीजें, मत करो ये मत करो, क्योंकि मन इंद्रिय को अच्छा नहीं लगता है ये सब। इंद्रिय को अच्छा लगता है सुनना, जो कर रहे हो करते रहो, जो कर रहे हो चाहे जो कर रहे हो करते रहो, बस थोड़ा थोड़ा साथ में ये जो लीलाएं हैं इनका श्रवण करो और इसमें भी आनंद आएगा। तो वो भी मनोरंजन की तरह से लेते हैं। भक्ति भी उनके लिए क्या होता है, मनोरंजन होता है। भक्ति हम किस लिए करते हैं, मनोरंजन के लिए करते हैं। जनरली काफी लोग भक्ति मनोरंजन के लिए करते हैं, कुछ लोग मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं, तो कुछ लोग मनोरंजन के लिए भगवान की जाय कथा सुनते हैं, कुछ लोग फिल्मी सिनेमा सॉन्ग सुनते हैं, तो कुछ लोग मनोरंजन के लिए भजन सुनते हैं। अनूप जलोटा कोई बड़ा एक बड़ा सुर ताल में बजा रहा है भजन, मजा आ गया, यानी केंद्र वही रहा अपना मजा, वो भक्ति नहीं है, वो हमने अपने सुख के लिए सुना। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, भक्ति क्या है और भुक्ति क्या है। तो इसलिए स्पष्टतः अनुभूति ये कर लेनी पड़ेगी पहले, कि ये जो भौतिक इंद्रिय सुख है वो पूरी तरह से हमारे लिए जहर है। एक वैष्णव भजन में गाया गया है, जानिया सुनिया विष खाइनू, कि मनुष्य जन्म पया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनू। और फिर बताया गया है कि ये जो इंद्रिय भोग का संसार है, ये इंद्रिय भोग के विषय सब जहर हैं आत्मा के लिए, और हम जहर को पी रहे हैं हर क्षण इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं किसी ना किसी तरह के। आप सोचिए हर क्षण हम क्या सोच रहे हैं, हर क्षण हमारा मन क्या सोचता है, मेरे लिए क्या है, मेरा आनंद किस चीज में, हर चीज में, उसमें मेरा आनंद कैसे मिलेगा, उससे मुझे आनंद कैसे मिलेगा, उससे मुझे आनंद कैसे मिलेगा, मैं मेरा आनंद, मेरा आनंद, मेरा आनंद। 24 घंटे हम पूरी तरह से इसमें डूबे रहते हैं, इस विचार में हर चीज में अपना आनंद ढूंढ रहे हैं, मेरा आनंद, मेरा आनंद, मेरा आनंद। इसे कहते हैं आत्मेंद्र प्रीति इच्छा, यानी काम। तो एक तो कहां हम 24 घंटे शत प्रतिशत डूबे हुए हैं अपने आनंद के लिए, और भक्ति बिल्कुल उससे विपरीत है। भक्ति बताया गया, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आश्रिष्य वा पादर तंत्र नष्ट माम, आप मुझे किसी भी हाल में रखिए, जो आपकी इच्छा है मारो भी राखो भी, जो आपकी इच्छा है जैसा करना है करो, लेकिन मुझे बस आपको प्रसन्न करने की इच्छा मेरे हृदय में रहे, इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए भक्ति एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है समझना, वो कोई सेंटिमेंटल नहीं है, वो केवल एक भावुकता की बात नहीं है, वो एक विज्ञान है। हाँ, वो विज्ञान इतना मुश्किल नहीं है जितना हमारे मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री के, कि इसके लिए आपको स्कूल में जाना पड़ेगा, पर भक्ति योग के स्कूल में, कि उसके लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। आप सरलता से भगवान के विषय में भगवान के भक्तों से सुनिए तो वो सब ज्ञान आएगा। सुनिए और सेवा भगवान के साथ साथ कीजिए, भक्तों के संग में, उनके संरक्षण में रहते हुए जैसा बता रहे हैं वैसा, तो अपने आप आपके हृदय में भगवान ज्ञान प्रकाशित करेंगे। जो गोपियां थी वो तो कोई वेदों की पंडित नहीं थी, उन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन वो परम भक्त हैं, भगवान सबसे अधिक संतुष्ट उनसे हैं। भगवान बताते हैं, वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, मैं वेदों के द्वारा जानने में दुर्लभ हूं, पर भक्तों के द्वारा आसानी से जानने योग्य हूं। तो अगर कोई व्यक्ति वेदों शास्त्रों का अध्ययन इस दृष्टि से कर रहा है, भगवद्गीता का अध्ययन, जैसे हम भी वेद पढ़ रहे हैं, हम भी शास्त्र पढ़ रहे हैं इस समय, भगवद्गीता पढ़ रहे हैं, यदि कोई इस दृष्टि से शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है कि ये पढ़ करके मैं जान लूंगा कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, तो वो कभी नहीं समझ पाएगा कि भगवान कौन है। लेकिन भक्ति भाव से, यानी भगवान की सेवा अर्थ, कि मैं जानना चाहता हूं कि भगवान का मैं कैसे अच्छी से अच्छी भक्ति कर सकता हूं, इस भावना से प्रेरित होकर जो इन शास्त्रों को पढ़ता है, विशेष रूप से भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, तो उसके हृदय में भगवान ज्ञान प्रकाशित करते हैं कि भक्ति कैसे की जाती है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते, जो सतत रूप से मेरी भक्ति में लगा है, भक्ति सेवा में लगा है, उसे मैं ज्ञान बुद्धि योग देता हूं जिससे मेरे पास आ सके। तो इसलिए जो ये पूरा प्रोसेस हम यहां बताते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक आंदोलन का जो प्रोसेस है, ये इसी आधार पे है कि हम जो भगवान के महान भक्त गुरु परंपरा में भगवान से ये ज्ञान लिए हैं और खुद भक्त हैं, भगवान की भक्ति में संलग्न है, उनसे हम सीखें, उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए सीखें कि भक्ति कैसे की जाती है। अपने मन से नहीं बनाएं कि मैं भक्ति ऐसे करूंगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि समझना कि अपने मन से हमें कुछ बनाना नहीं चाहिए, अपने मन से भजन बनाना, क्योंकि ये भौतिक मन का एक लक्षण है, डू समथिंग न्यू, कुछ नया करो। हरे कृष्ण मंत्र चल रहा है, अरे ये तो बहुत देर हो गई, इसको कुछ नया करो, इसमें अभी ऐसा करो, इसमें इसकी जगह ऐसा करेंगे तो भी क्या है, तो ऐसा करो ना, कुछ नया मसाला डालो, कुछ नया करते रहो। ये एक भौतिक जगत का लक्षण है, ऐसे आप देखो हर दिन नया नया कुछ होता है, आप कहीं भी चले जाइए, कोई बिल्डिंग टूट रही है, कोई नई बन रही है, कोई रास्ते खुद रहे हैं, कोई नहीं बन रहे हैं, हमेशा कुछ ना होता रह रहा है संसार में। क्यों? डू समथिंग न्यू, कहीं पॉलिश दुआई हो रही है, पेंटिंग दुआई हो रही है, फिर हमेशा कुछ ना कुछ नया 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 नया, कंप्यूटर्स हर दिन नया इन्वेंशन हो रहा है, कुछ नया कर, क्योंकि मन शांत नहीं रहता है, उसको हमेशा चाहिए कुछ नया, बोर हो जाता है एक से चीज से, बोर हो जाता है, कुछ नया करो, अभी कुछ नया करो। तो ये भौतिक है, ये भौतिक विचार है, नया करो, और यही विचारधारा हम भक्ति में लगाते हैं, नया करो, ये क्यों करना है, ये भजन ही क्यों गाना है, ऐसे क्यों नहीं करना है, कुछ अपने मन से लगाओ, क्योंकि तभी तो हमारी महानता पता लगेगी, हम भी कुछ महान भक्त, हमने बनाया है, हमने शुरू किया है, इसलिए कुछ नया करो। ये भक्ति में प्रगति करने के लिए अवरोधक है ये विचारधारा। महाजन येन गता सपन्था, जिस पथ को महाजन गए हैं उस पथ का शांतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक अनुसरण करते रहिए, भक्ति में पहुंच जाएंगे, भगवान के धाम पहुंचेंगे। और जहां ये अपने मन के ऊपर आधारित नया कुछ करने की इच्छा है, रिसर्च, मैं कुछ नया करूं, तो प्रगति नहीं होगा, यहीं बने रहेंगे इस भौतिक जगत में। तो ये विचार दिमाग में होना चाहिए। तो इसलिए विनम्रता से आचार्यगण, जो ऑथराइज, जो गुरु परंपरा में आए हुए महान महान आचार्य हुए हैं, बारह महाजन, विशेष रूप से बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, उन सबके जो तरीका बताया है और उन्हीं की परंपरा में आगे चलते हुए रिसेंट में हम चैतन्य महाप्रभु, तो उनके द्वारा जो हमें पथ बताया गया है, उस पथ को सरलता से श्रद्धापूर्वक पालन करने की जरूरत है, तो अपने आप सब धीरे धीरे आएगा। और अपनी अपनी बुद्धि से टांग लड़ाएंगे, ऐसा करेंगे नहीं ऐसा करेंगे, तो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए जो उसी परंपरा में श्री प्रभुपाद उन्होंने जो तरीका दिए हैं, जो अंग दिए हैं भक्ति, वो कोई अपने मन से बना करके नहीं दिए हैं, उस सबके पीछे भक्ति सामर सिंधु है। और भक्ति सामर सिंधु में पढ़ते हैं रूप गोस्वामी, वो सब शास्त्रों का उल्लेख करते हैं कि ये सब शास्त्रों के आधार पर उन्होंने वो संहिता बनाई है, यानी कुछ ही मन से नहीं बनाया गया है। और वो महान महान आचार्य हैं जिन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं, जो भगवान के द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त होते हैं, तो इसलिए उनको समझने की जरूरत है वो क्या कह रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जो श्री प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी पाद के पदचिन्ह का अनुसरण करते चलाया है, कृपया करके उसे यथारूप फॉलो कीजिए। यदि आप वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के चरण को पालन करना चाहते हैं, एक भजन है जिसमें बताया गया है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु इस एट प्रेजेंट इस एज में जो चैतन्य महाप्रभु के पदचिन्हों उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं चल रहा है, वो राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पूर्व आए हैं, कैसे श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी भक्ति सेवा कैसे प्राप्त कर सकते हैं सिखाने के लिए, उनसे अच्छा अध्यापक कौन हो सकता है। स्वयं भगवान सिखाने आए हैं कि मेरी भक्ति आप कैसे कर सकते हैं, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं जो उनकी परम भक्त हैं, तो उनसे अच्छा और कौन सिखाएगा भक्ति कैसे करना है, तो क्यों अपना कुछ नया ईजाद करें। जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, जो उनके शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में आए गुरु से हम सीख रहे हैं, तो क्यों अपनी चीज नहीं करें, वो संपूर्ण है, आपकी अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ये संगीत आंदोलन है जो श्री प्रभुपाद जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसको यथारूप अपनाएं। बहुत सरल है कि महत्वपूर्ण अंग जैसे हम बाबा बोलते हैं, पर पता नहीं कितने आप में से भक्तगण पालन कर रहे हैं, कई जो कर रहे हैं पर अभी भी कई नहीं कर पा रहे होंगे किसी वजह से, बस नहीं करना है, सुनना है लेकिन बस नहीं करना है, ऐसी भी भावना हो सकती है, तो कृपया उसको छोड़िए। एक शहद की शीशी है, आप रोज सुन रहे हैं शहद ऐसा है, शहद इतना मीठा होता है, शहद ऐसा होता है, शहद ऐसा होता है, आपके मन में इच्छा जागृत हो रही है शहद चखना है, पर वो बॉटल को बाहर से ही चखे जा रहे हैं, खोल नहीं रहे हैं उसे, निकाल नहीं रहे हैं शहद को और बाहर से चख रहे हैं, तो कांच का स्वाद आएगा, शहद का स्वाद नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से ये जो भक्ति सेवा का पूरा अंग है, इसे शहद की बोतल खोलिए, जो तरीका दिया है उसे अपनाइए यथारूप पूरी तरह से, धीरे धीरे, हो सकता है एक ही दिन में ना अपना पाए तो, पर कम से कम उत्सुक होना चाहिए कि हम एक एक करके सभी अंगों को अपनाएंगे, कम से कम ये भाव तो होना ही चाहिए, और फिर धीरे धीरे उसको जैसे जैसे प्रगति हो वैसे वैसे अपनाइए, तो फिर आप देखेंगे कि वास्तव में आप उस भक्ति भाव को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसलिए आधारभूत चीजें हैं कि कम से कम हर रोज प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण मंत्र जप करें। तो जानता नहीं कितने आप में से भक्तगण शुरू किए हैं 16 माला कम से कम जप करना, तो अगर शुरुआत में एकदम 16 माला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक माला कीजिए, दो माला कीजिए, चार माला कीजिए, पर ये कम से कम 16 पे तो आना चाहिए ही, थोड़े समय के बाद में भले आ जाए, और फिर और आगे जाना चाहिए, ऐसा नहीं 16 माला पे रुक गए हैं, 16 माला तो कम से कम है, और उसके आगे तो 24 घंटे भगवान का स्मरण हो ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वो आगे की बात है, पर कम से कम पहले 16 माला तो करें, फिर उसके बाद केवल भगवान को भोग लगा करके ही खाएं, अन्यथा और कुछ ना खाएं। ये भी नहीं जानता मैं कितने आप में से पालन कर रहे हैं, पर आशा है कर रहे होंगे कुछ लोग, तो उसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लगाते हैं भोग और फिर कुछ बिना भोग लगाए खाते हैं। तो जो तरीका है पूरी तरह से उसको समझिए, अपनाइए। भगवान बोले हैं जो भी मुझे बिना भोग लगाए खाएंगे वो सब केवल पाप खाएंगे, तो क्यों पाप खाना चाहते हैं, पाप खाएंगे तो भक्ति नहीं बढ़ेगी, तो निश्चित होना चाहिए कि जो भी खाएंगे प्रसाद ही खाएंगे, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। अगर भगवान को कोई चीज भोग नहीं लगाइए तो चाहे वो हमारे स्वाद के लिए बहुत अच्छी हो, बहुत उसमें हमें आनंद आएगा, लेकिन फिर भी हम नहीं खाएंगे अगर वो भगवान को भोग नहीं लगाई गई, तो हम जा रहे रास्ते में और बहुत हमारी फेवरेट दुकान आ गई है, फेवरेट होटल आ गया है, पर होटल में भगवान को भोग नहीं लगेगा इसलिए नहीं खाएंगे, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो भगवान को भोग लगाना, हरे कृष्ण मंत्र नियमित रूप से जप करना, और ये जो लोग पढ़ सकते हैं, अधिकतर आप में से सब पढ़ सकते हैं, तो ये ग्रंथ पढ़ना भगवान भगवद्गीता विशेष रूप से प्रारंभ में भगवद्गीता यथारूप नियमित रूप से पढ़ना और बस ये तीन चीज महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से जब भक्तों का संग है उसमें मिलकर के कीर्तन करना चर्चा करना इस विषय पे, तो ऐसा करने से धीरे धीरे हमारा विकास होगा। और विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो पता लगेगा कि भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा जागृत हो रही है कि नहीं, और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा कम हो रही है कि नहीं, भौतिक आसक्ति भौतिक भोग करने की इच्छा कम हो रही है कि नहीं, और भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा बढ़ रही है कि नहीं। ये हमारी उत्कंठा है कि भगवान का मैं प्रसन्न कर पाऊं, भगवान को क्या पसंद है वो करूं, ओ भगवान को ये भोग लगाना भगवान बोले हैं तो मैं करूंगा, चाहे मेरी इंद्रियों को उससे अच्छा लगे ना लगे। भगवान चाहते हैं कि हम सुबह उठ करके भगवान का नाम लें तो हम भगवान इसलिए लेंगे, सुबह उठेंगे लेंगे, मन कर रहा है नहीं अभी सोए रहो नहीं उठेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम उठेंगे। तो इससे पता लगता है कि हम हमारी प्रगति हो रही है। तो इस प्रकार से बहुत सरल उपाय से हम लोग जा रहे हैं और इधर उधर बहकावे में नहीं आकर के सुनना है हमने यहाँ सुना है हमने यहाँ सुना है हमने यहाँ सुना है। तो अधिकृत लोगों से भक्तों से सुनिए और श्रद्धापूर्वक उसको पालन कीजिए, सब कुछ उसमें अपने आप आएगा। यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। आपके कोई प्रश्न है इस विषय में, किसी भी विषय में, कुछ भी इस पहले इस विषय में जो आज डिस्कस किया उसके बाद कोई और विषय में?
हरे कृष्ण। जैसे भी आपने कहा कि हर चीज हमें भूल आके खानी चाहिए, यदि हम जैसे कहीं जा रहे हैं या होटल पड़ गया हमारे रेस्टोरेंट पड़ गया तो हम वहां पर नहीं खा सकते। सपोज दैट कि हम ऑफिस जॉब में है, हमें वहां 8 घंटे या 4 घंटे 6 घंटे एक्स्ट्रा रुकना पड़ता है, और यदि हमें वहां पर कोई चीज यदि स्नैक्स वगैरह हमारे आ रहे हैं मतलब बिना प्याज लहसुन के शुद्ध, और क्या हम वहां पर उसे अपने ऑफिस में या वहां पर हम भगवान को ध्यान में रखते हुए उसका भोग लगाते हुए उस चीज को हम ग्रहण कर सकते हैं या नहीं?
जहां तक संभव है
रुकना पड़ता है तो 4 घंटे 6 घंटे एक्स्ट्रा,
मतलब इसमें क्या होता है कि हमको देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट लेवल क्या है और फिर उसके उसको कहां तक हम फॉलो कर पा रहे हैं, प्रयास ही होना चाहिए। तो भोग लगाना ऐसा नहीं होता है कि बस भगवान के आगे प्लेट रख दिया तो उन्हें खाना ही पड़ेगा, जो भी प्लेट सामने रख दिया तो भोग बन गया बस, वो कोई एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है भोग लगाना। भगवान बोले हैं श्लोक में जहां भोग लगाने की बात आई है, तदहम भक्तिया प्रश्नामि, जो मुझे भक्ति भाव से भोग लगाता है मैं उसे खाता हूं। भगवान कोई आपके समोसे के भूखे तो है नहीं, क्या सोच रहे हैं कि मेरे डाबर का समोसा है वो पसंद आएगा? भगवान के पास तो बनाने वाली राधा रानी है जो इतना सुंदर बनाती है भगवान के लिए व्यंजन और बहुत प्रेम से बनाती है, भौतिक दृष्टि देखा जाए तो भी क्या बनाएंगे। तो भगवान को एग्जैक्टली वो उस भौतिक जगत की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इतनी टेस्टी हो, तो इसलिए भगवान कोई ऐसे नहीं कि आपने सामने रख दिया भगवान विवश हो गए उसे खाने के लिए कि इसके बाद आपको प्रसाद बन गया। इसलिए बनाने वाला उसकी भावना भक्ति होनी चाहिए, फिर भगवान को भोग लगाने वाला उसकी भावना में भक्ति होनी चाहिए, उसको पिरसने वाला वो भक्ति भाव से पिरसना चाहिए, और जो खाने वाला उसे भी भक्ति भाव से उसे ग्रहण करना चाहिए, तब जाकर के वो शुद्ध प्रसाद कहलाएगा। इसलिए बेस्ट ये लेवल है। अभी प्रैक्टिकल कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं जहां पर ये बेस्ट लेवल पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि गृहस्थ जीवन में हम ऐसे रहते हैं, तो उसमें एज फार एज पॉसिबल जहां तक हो सके बेस्ट लेवल पर तक ही प्रयास करना चाहिए। तो इमरजेंसी की बात अलग है पर वो हमारे जनरल रूटीन में नहीं आ जाना चाहिए। अभी इमरजेंसी की जहां बात है कि ऐसा कोई हो गया है तो फिर वहां पर फिर समय के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको कहीं अधिक रुकना पड़े तो आप अगर ऐसा कोई प्रबंध कर सकें कि घर से कुछ ऐसी ड्राई आइटम आप ले जा सकें रख सकें वहां अपने ऑफिस में कबर्ड में तो वो रख सकते हैं, इमरजेंसी पड़ने पर आप वो ले सकते हैं। अलग अलग मैं बता रहा हूं इसमें से जो भी कुछ हिंट है बाद में धीरे धीरे वो सब पता लगेंगे। या तो फिर फल और ये चीजें जो हैं वो उनके अंदर जो ये कार्मिक जो कर्मिक सिद्धांत जो होता है रिएक्शन वो कम होता है, तो अन्न का विशेष भगवान को ढंग से भोग लगना ही चाहिए, बाकी चीज लगनी चाहिए पर फिर भी कंपैरेटिवली जो फल है और जो दूध की बनी चीजें हैं वो जो बनाने वाले हैं उनका जो कलमश है वो उसमें नहीं जाता है। जो अन्न बना रहा है उस व्यक्ति की भावना जितनी उसमें एंटर करती है उस अन्न में, उतनी वो जो दूध आपको बनाकर दे रहा है या जो रसगुल्ला जो दूध का बना है वो बना के दे रहा है उसमें वो उतना अधिक नहीं जाएगा। नहीं तो बनाने वाले की भावना जाती है जो चीज बनाता है उसमें, और जब आप उसे खाते हैं तो वो आपके अंदर इफेक्ट करती है। ये सूक्ष्म लॉ है। अभी साइंटिस्ट लोग बोलेंगे ये क्या बकवास है, सब ओल्ड फैशन थिंग्स। हाँ, आपके लिए ओल्ड फैशन हो सकती है, पर यहां हम सूक्ष्म नियमों की बात कर रहे हैं जो हमारे मन को प्रभावित करती हैं। यहां हम केवल अपने स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहे हैं कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है, यहां मन की बात कर रहे हैं कि हमारे मन हमारी भावनाओं को क्या चीज प्रभावित करती है। यहां सूक्ष्म नियम काम करते हैं, तो बनाने वाले की भावना। इसलिए यदि इमरजेंसी भी हो तो दूध की बनी चीजें, फल और दूध की बनी चीजें मन में भगवान को प्रार्थना करके ले सकते हैं अन्न से। और अगर आप ऐसी जगह पर जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आपको अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन को टिकाने के लिए जरूरी ही है, तो फिर आप अन्न भी खा सकते हैं। तो डिग्री में देखना पड़ेगा कैसे कैसे। अगर आप अंटार्कटिका में हैं जहां अन्न भी नहीं है तो आप मछली भी खा सकते हैं। तो ये सिचुएशन, क्योंकि वहां आपका शरीर की रक्षा करना के लिए वो आवश्यक है तो वो भी कर सकते हैं। पर एज फार एज पॉसिबल हाईएस्ट तक पहुंचने के पास रहने का, उस तक रहने का प्रयास करना चाहिए। और कोई प्रश्न? तो जो उसमें सलाद होता है ना, आपके सलाद बहुत तरह के होते हैं, तो सलाद खा सकते हैं, जूस होते हैं, जूस पी सकते हैं। फिर वो डिपेंड करेगा आप कितने बोल्ड हैं, आप किसे अधिक महत्व देते हैं।
आप
पारिवारिक आप उनको बोल सकते हैं कि हम भगवान को भोग लगा करके ही खाते हैं, आप भी भोग लगाइए हम जरूर खाएंगे। हाँ, तो इसलिए उनको बोलिए कि आप एक एक माला शुरू कीजिए और भगवान को भोग लगाना शुरू कीजिए, तो वो माला करने से वो अपने आप धीरे हो जाएगा। कम से कम जो माला कर रहे हैं और धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके अंग खा सकते हैं जो थोड़ा सिंसियर हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और जो बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट में है तो फिर आप सोचिए आपको क्या चीज़ पसंद। उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाना ही अच्छा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या भगवान के साथ अच्छा व्यवहार बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिसको इंपॉर्टेंट समझें उसके हिसाब से आप कीजिए। लेकिन जनरली वो लोग भी जब देखेंगे कि आप इतने स्ट्रांग हैं तो वो लोग भी सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, तो वो पूछेंगे आपको समझाइए फिर ऐसा क्यों है। तो अगर वो सिंसियर हैं, आप मेहमान हैं, मेहमान जो मेहमान को पसंद है वो करना चाहिए। तो यदि वो आपको वास्तव में मेहमान समझते हैं तो वो अगर वास्तव में मेहमान समझते हैं तो खुद चेंज होंगे। हाँ, तो ऐसे हो जाएगा। ये सब मन में ऐसा लगता है कि क्या होगा क्या होगा, तो अच्छी चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, अगर भले ही दूसरे को थोड़ा बुरा भी लग जाए कुछ समय के लिए, पर वो बाद में समझेंगे तो आएंगे। तो अच्छी चीज है, वो जो सही है वो होना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए। वो भी कम से कम उनको समझ आ गई, हमारे घर में आते हैं तो कुछ खाते ही नहीं है तो क्या है। अगर वो सिंसियर हैं तो अपने को सुधार लेंगे, और नहीं है तो फिर ऐसे रहेंगे। तो फिर आप वहां जाइए, हरे कृष्णा बस करिए और घर पे आके खाइए, और क्या कर सकते। और कोई प्रश्न?
एक आपने अभी बोला था ना कि दुर्गे माँ हर समय त्रिशूल रखती है हाथ में।
हाँ जी।
तो मतलब भौतिक गुस्से बचाने के लिए बीच में आया था टॉपिक, थोड़ा सो के लिए।
भौतिक बचाने के लिए, भौतिक किस चीज?
कष्ट, भौतिक कष्ट,
नहीं, प्रश्न क्या है?
भौतिक कष्ट
देने के लिए
दुर्गा माँ कष्ट करते ना,
हाँ
जीवों को कष्ट देती ताकि भगवान को खोज
ले। हाँ, पर कष्ट तो देती है ना, तो जीव जो भौतिक जगत में बने रहते हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं कि ये कष्ट जो है भगवान की तरफ जाने के लिए, वो कष्ट भुगतते रहेंगे फिर भुगतते रहेंगे, हाँ बस कोई बात नहीं, उन्हें आशा लगी रहेगी हाँ थोड़ा कष्ट कम होगा तो अच्छा लगेगा। तो ये उसका ये परोक्ष परिणाम है कि हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, वो लोग जो भगवान के भक्तों के संपर्क में आ रहे हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं। नहीं तो आपके देखिए कितने सारे लोग हैं जो हर दिन कितनी कष्ट में हो रहे हैं लेकिन फिर भी कभी भगवान की तरफ नहीं आते हैं, दुख भोगते रहेंगे फिर भी अरे भाई चलो भगवान की तरफ है, छोड़ो यार अच्छा मैं ऐसे करता हूँ कोई बात नहीं ठीक हूँ मैं फिर भी। तो ऐसे लोग भी हैं, तो जो पुण्य है जो पुण्यशाली हैं वो लोग दुख पड़ने पर भगवान की तरफ मुड़ते हैं, और जो असुर हैं राक्षसी प्रवृत्ति के हैं भगवान से ईर्ष्या जिनके अंदर बहुत अधिक है वो लोग दुख पड़ने पर और भगवान से दूर जाते हैं। अरे तुम भगवान भगवान बोलते हो ये क्या है, ये क्या भगवान है तुम्हारा, मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है, फिर तुम अपने भगवान को अपने पास रखो, मुझे नहीं आना किसी भगवान के पास। तो दुख पड़ने पर वो लोग और दूर जाते हैं। तो इसलिए ये पूरी भौतिक सृष्टि है दो दो कारणों से है, हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए फैसिलिटी है, और जब उनसे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और भक्तों के संग में आते हैं तो समझ करके वापस भगवत धाम जाने के लिए रास्ता, दोनों के लिए काम के लिए भौतिक जगत है। तो जो कष्ट दिए आते हैं वो सजा भी है, सजा मतलब क्योंकि हम चाहते हैं भौतिक सुख, और भौतिक सुख में कई लक्षण है कि साथ साथ दुख आएंगे ही, तो इसलिए वो अपने आप कष्ट मिलते ही है, पर उसका परोक्ष उसका ये उसका वो परिणाम ये होता है कि जो पुण्य आत्माएं हैं वो उससे इस जेल से बाहर निकलने की इच्छा उनकी तीव्र हो जाती है, तो वो होना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली आप शंका क्या है? नहीं, भौतिक कष्टों से बचा करके भगवान के चरणों तक ले जाती है अल्टीमेटली, हाई उनकी वास्तविक इच्छा यही है हृदय में कि ये मेरे त्रिशूल में ना आए, ये मेरी ये इस भौतिक जगत को छोड़ करके इस जेल को छोड़कर, जैसे जेल का सुपरिंटेंडेंट है तो हृदय से तो यही चाहेगा ना कि ये सब यहां से निकल के वापस चले जाए, पर जब तक वो है तब तक तो उनके ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना उनको। तो दुर्गा जी जो है वो सबको ऐसा नहीं कि वो त्रिशूल जो उनकी शरण में आ रहे हैं, उनकी शरण में आने मतलब क्या है, उनकी शरण में आने का मतलब है दुर्गा जी लिस्ट अम्मे ये दो वो दो ये दो वो दो, यही है ना उनकी शरण में आना, जो ये चाहिए चाहिए। तो ये शरण में आने का परिणाम क्या होता है, हाँ ये भी लो और साथ में त्रिशूल भी लो, दोनों चीज लो, क्योंकि साथ में आता है, अलग अलग नहीं आता है। लेकिन उनकी इच्छा नहीं है, दुर्गा जी खुद की जो हृदय की इच्छा है वो ये नहीं है कि हम ऐसे भौतिक इन दुखों में भुगतते रहे, उनकी वास्तविक इच्छा तो हृदय की यही है कि ये लोग भी इससे निकल करके जाएं, पर उसके लिए मार्ग जो दिखाना है वो दुर्गा जी नहीं दिखाती हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त दिखाते हैं। दुर्गा जी का काम ये नहीं है भक्ति, भगवान की भक्ति देना वो दुर्गा जी का डायरेक्ट काम नहीं है। हाँ वो आपको कष्ट दे दे करके आपको उसके लिए तैयार करती हैं, लेकिन उनका कार्य वो नहीं है, वो कार्य है भगवान के भक्तों का, जो आपको बताते हैं कि ये कष्ट मिल रहे हैं इससे भागो भगवत धाम जाओ, उनका कार्य है। इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, देवी देवता की शरण में नहीं जाना, देवता को वो काम नहीं है, देवी देवता भगवान के शुद्ध भक्त भी नहीं है, शुद्ध भक्त भगवान की शुद्ध भक्ति दे सकते हैं। दुर्गा जी का काम भगवान की शुद्ध भक्ति देना नहीं है, दुर्गा जी का काम है इस समय सुपरिंटेंडेंट कैदियों को सजा देना, उनका ये काम है। इसलिए उनसे शुद्ध भक्ति नहीं मांगनी चाहिए, शुद्ध भक्ति मांगी जाती है भगवान श्री कृष्ण से और उनके भक्तों से, उनसे शुद्ध भक्ति मांगी जाती है। यमराज की भी यही काम है अल्टीमेटली, सजा देते हैं सबको, पर उनका अंतिम हेतु क्या है, भगवान का आदेश इस संसार के पालन पोषण के लिए जरूरी है, जो गड़बड़ करेंगे जो पाप करेंगे उनको पाप का परिणाम उनका देना, तो एक तरीके से वो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। पर आप यमराज जी को जाकर नहीं मांगेंगे ना, यमराज जी में भगवान की शुद्ध भक्ति दो, यमराज जी का वो कार्य नहीं है शुद्ध भक्ति देना, उनका कार्य इस समय है वो खुद शुद्ध भक्त हैं, पर उनका ये कार्य नहीं है कि वो आपको शुद्ध भक्ति, उनका कार्य है कि आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा रख करके आपको सजा दे कहां जाना है, ये उनका कार्य है। तो शुद्ध भक्ति देने का कार्य है शुद्ध भक्तों का, इसलिए हमें जो गुरु परंपरा में आचार्य हैं उनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को पहुंचना चाहिए, ना कि देवी देवताओं के माध्यम से। मीन्स प्रणाम करते हैं, हमको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन विशेष उनसे, जैसे हम किसी भी, हम तो किसी भक्त को, किसी को भी मिलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं आप हमें आशीर्वाद दीजिए, ठीक है, पर जो विशेष जो देने वाले जो मेन कार्य जो है, मेन जो देंगे वो तो भगवान के भक्ति देंगे, वो नहीं देंगे। आप सोचें कि केवल उनकी पूजा करके आप शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। वो जैसे एक तो होते हैं आपके सपोर्ट देने वाले, हाँ चलो आप अच्छा हमारी शुभकामनाएं भी हैं, पर एक होते हैं आपको मेन, आपको ले जाने वाले ना, तो वो शुभकामनाएं वाले हैं आपको, हाँ उनकी उनके आशीर्वाद भी आपको है, साथ में है, सपोर्ट है, पर मेन जो है वो जो देना है वो तो कार्य भक्तों का है, उनका मेन कार्य नहीं है, इसलिए उनकी सहायता ले सकते हैं। इसलिए भक्त जो हर एक को प्रणाम करते हैं, उस दृष्टि से सबको रिस्पेक्ट देते हैं, किसी का भी अपराध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी एक समान के स्तर पे हैं, सबको हम एक समान पूजें, नहीं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भक्ति देने के लिए मेन है, इसलिए हम पूजा अर्चना उनका पद चिन्ह का पालन करना वो तो उन्हीं का करेंगे ना कि देवताओं का, क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं है। श्रीमद् भगवद्गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।